السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة الأعلیٰ کو مکمل کریں گے. اس سورت میں ہم آیت نمبر 8 تک پڑھ چکے ہیں. یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصبیحات میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اس سورت میں ہم دیکھ چکے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حفظ کرنا بھی آسان فرما دے گا، یہ بھی ماننا ہے، اور یہ کہ نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور نیک اعمال کو آسان کر کے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، یہ بھی مانا ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں وہ مشکل ہوتا ہے. آپ نے 100 سیڑھیاں اگر چڑھنی ہیں تو اس وقت آپ کے لیے 100ویں سیڑھی بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ 2 سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں تو اگلی 2 چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ 4 سیڑھیاں چڑھ گئے تو اگلی 3 چڑھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے ہی سے 10ویں سیڑھی پہ جانا چاہیں تو وہ مشکل لگے گا. تو سٹیپ بائی سٹیپ جب انسان چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے. اسی طرح تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ نزول وحی کو آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت سے وحی کو حفظ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو آپ کے اوپر آسان کر دیں گے، یعنی ان کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. اس کا معنی ہم اپنے لفظوں میں نہ لیں بلکہ یہ کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایسے احکامات دیے کہ جو آپ کے لیے آسان ہوں گے. آپ دیکھ لیں، جو لوگ پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ جب نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے وہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن جب انہوں نے شروع کیا تو اب ایسا لگتا ہے کہ حجاب لینا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جو عبایا نہیں پہنتے پہلے ان کے لیے بہت مشکل تھا، اب جب عبایا پہننا شروع کر دیا تو لگا کہ یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا. تو اسی طرح جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جاتے تو وہ چیز آسان ہوتی جاتی ہے، مشکل نہیں رہتی پھر، بشرطے کہ انسان آگے سٹیپ اٹھاتا رہے. فذکر ان نفعات الذکر، فذکر پس نصیحت کیجئے، ان نفعات الذکر اگر فائدہ دے، الذکر نصیحت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر فائدہ نہیں دے تو پھر آپ نہ کریں، بلکہ مطلب یہ کہ آپ نے چاہے فائدہ دے یا نہ فائدہ دے بلکہ آپ نے کرتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کور کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں اور تذکیر کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. اب نصیحت آپ نے عام نصیحت کرنی ہے، آپ سب کو نصیحت کریں گے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، کافر ہے، مومن ہے، سب کو نصیحت ہوگی. ہاں، مگر نصیحت کا فائدہ وہی لیتا ہے، سید کرو من یخشا، جو ڈرتا ہے وہ ہی نصیحت پکڑے گا. نصیحت کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ایک تو آپ نصیحتیں عام کریں گے نا، سب لوگوں کو نصیحت کریں گے، اور اس کے اندر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، مگر ایک خاص تذکیر جو ہے وہ آپ اس کو کریں جس کا آپ دیکھیں کہ اس کی انکلینیشن ہے، اس کا میلان ہے اس طرف، اس کے اوپر آپ زیادہ وقت لگائیں. جیسے ہم نے عبس و تولیٰ میں پڑھ لیا ہے کہ وہ جو نابینا صحابی ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ کیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی سننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جانا جو نہیں سننا چاہتے اور ہٹ دھرم ہیں اور ضدی ہیں، यानी आप उन्हीं के पीछे पड़े रहें तो आप अपना वक्त जाया करेंगे। तो तबलीग तो सबको ही करनी है, सबको ही बुलाना है इस तरफ, मगर उसके बाद जो अपना एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी लगानी है वो उन लोगों के लिए जो आपकी नसीहत को सुनने वाले हैं, जो लेना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहते उसको फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए। तो नसीहत का फायदा वो ही लेगा जो अल्लाह ताला से डरने वाला होगा, जिसमें खौफे खुदा होगा। वाकई जो खौफे खुदा रखते हैं वो ही बात को सुनना भी चाहते हैं और वो ही नसीहत को लेना भी चाहते हैं। वरना आपने आम तौर पे यही रवैया देखा होगा कि अक्सर लोग नसीहत की बात पे कान नहीं धरते, और वो वजह क्या है, खौफ खुदा नहीं है अंदर। और खशियत वो वाला डर होता है जो इंसान अपने से बड़े से डरता है, जिसकी अजमत उसके दिल में होती है, उसका डर। ठीक है, तो क्या समझ आई कि मतलब ये है कि अगर फायदा हो किसी को तब भी समझाएं, ना हो तब भी समझाएं, क्योंकि नसीहत कभी बेकार नहीं होती। अगर उसको नहीं फायदा होगा तो आपको खुद को तो फायदा होगा ही, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो इसका तो फायदा आपको तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि हमारे कान सुन रहे होते हैं जो हम कहते हैं। ठीक है, हाँ, मगर यह कि कौन बंदा फायदा उठाएगा, वो ही है जो कि अल्लाह ताला से डरने वाला है। ये वह यतजन्नबुहा, यतजन्नब जंब कहते हैं साइड को, पहलू को। तो यदि पहलू बचाना, गुरेज करना, बचना, वो बचेगा कौन? अल अशका, शकी भी नहीं कहा गया, अशका, बहुत ज्यादा जो बदबख्त है, बहुत ज्यादा जिसमें शकावत है। यानी ये ऐसा कलाम है अल्लाह ताला का जो सूरज की तरह रोशन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई फिर भी इससे मुंह मोड़ता है, इसकी तरफ नहीं आता, तो वो बदकिस्मती की इंतहा को है, जिसके अंदर कोई भलाई ना रह गई हो, कोई अपने आप को सही करने का जज्बा ना हो, वो है अशका, बहुत ज्यादा ही बदबख्त। तो जिसके अंदर कोई खैर नहीं रह गई, ऐसा इंसान इससे बचता है, इससे पहलू तही करता है। तो खास तौर पे उस वक्त के जो कुफार थे उनके लिए तो अशका का वर्ड इसलिए आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये कुरान करीम सुन के भी अगर ये नहीं बदलते और नहीं ईमान लाते तो यकीनन ये अशका ही हैं, इंतहाई बदबख्त। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से तो नहीं, लेकिन वैसे जब लोग कुरान करीम सुने और फिर उसे पहलू तही करें और उनको कोई असर ना हो और इसको सुनना ना चाहते हो और इससे बचते हो कि कहीं हमारे कानों में ना चला जाए, तो अशका ना सही लेकिन बदबख्ती का एक पहलू तो उनके अंदर है कि बहुत बदकिस्मती है, ये बहुत बदकिस्मती है कि इंसान इस कलामे पाक से दूर हो और अपने आप को दूर रखे जो अल्लाह का कलाम है। और आज अक्सर यही रवैया देखने को मिलता है, क्योंकि हम जिस बीमारी में मुबतला है वो उसका भी जिक्र आगे आने वाला है, और उस बीमारी की वजह से सुनना नहीं चाहते, यानी कहीं चल भी रहा हो तो उसकी तरफ आना नहीं चाहते, कोई कान में हमारे बात पड़ ना जाए। तो ये इंसान की बदकिस्मती होती है, इंसान इसको शायद बदकिस्मती ना समझता हो और समझता हो कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बदकिस्मती तो हम उसको कहते हैं जिसको जॉब ना मिले, बदकिस्मती वो है कि जो पढ़ाई ना कर सके, जिसके पास बहुत माल ना हो, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर कोई इस कुरान से गुरेज करता। तो जो अशका है ना वो है अल्लदी यस्नार अल-कुबरा, वो दाखिल होगा नार में, आग में, अल-कुबरा, कबीर भी नहीं, कुबरा, बहुत बड़ी आग में, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, फिर वो खुद दाखिल हो जाएगा। इसलिए कि ये कुरान से बचता रहा, ये इस तस्कीर से बचता रहा, इसने इसको अवॉइड किया, तो अब इसके लिए बड़ी आग है। ये बदबख्ती का अंजाम है आखरत के अंदर, और इससे क्या बड़ी बख्ती हो सकती कि इंसान आग में पड़ जाए। तो सिर्फ आग नहीं कहा गया, बड़ी आग। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर वो ऐसी आग है जिसमें ना वो जिएगा और ना ही वो मरेगा। वो जिंदगी ऐसी नहीं है जिसको आप जिंदगी कह सके, हर तरफ से मौत उसको घेर रही होगी, यानी हर किस्म का सामान है कि जिससे मौत आ जाती है, लेकिन वो फिर भी मरेगा नहीं। एक सेकंड के लिए इंसान अपनी उंगली आग में डाल दे तो इंसान फौरी हटा लेता है, तो कुबरा, जो नारुल कुबरा है, उसका क्या हाल होगा जिसमें वो जिंदगी है जिसको जिंदगी नहीं कहा जा सकता और मौत भी नहीं आती। हत्ता के मौत पुकारेंगे, दुनिया में ये लोग जीना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे, और वहां पे मौत को पुकार रहे हैं और मौत नहीं आ रही। इसलिए कि कोई राहत का सामान नहीं ना, एक लम्हे का भी सुकून नहीं, इसलिए वो मौत से भी बदतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असली जहन्नमी है इन्हें ना तो मौत आएगी ना उनको जिंदगी मिलेगी। हाँ, अल्लाह ताला का इरादा जिनके साथ रहमत का हो वो फिर आग से निकल जाएंगे। अल्लाहु अकबर, कद अफलह मन तज़क्का। अब ये बदबख्ती की तो बात बता दी गई कि बदबख्ती इसके अंदर है कि इंसान इस कलाम से अपने आप को बचा के रखे। सारी सारी जिंदगियां गुजर जाती है, इस कलाम की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं होती और कोई जरूरत भी नहीं समझते, तो फिर कामयाबी किस में है? कामयाबी इसमें है कि मन तज़क्का, जो अपना तज़किया करे। तज़किया करना मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तज़किया करना क्या है, ज़कात भी इसी से, पाक करना। जिसने पाक किया अपने नफ्स को, कैसे अपने नफ्स को पाक किया जाता है? नफ्स के अंदर ना ख्वाहिशात हैं, दुनिया परस्ती है, अपने नफ्स की पूजा करना है, अपनी ख्वाहिशात को पूजा करना है, अपने जो दुनिया के मीलानात है उसकी तरफ बढ़ना है। ये सारी चीज़ें नफ्स पसंद करता है, नफ्स दिल करता है कि आराम किया जाए और बस मन मौजी की जाए और बस मज़ा किया जाए और बस दुनिया तो एक दफ़ा मिलती है और बस इसी का शेदाई हुआ जाए और बस अपनी धुन में जिंदगी गुजारी जाए, नफ्स ये चाहता है। अब इस नफ्स से ये गंदगियां निकालनी है, ये गंदगियां हैं, ये नापाकी है, और इसके अंदर नेकियों के बीज बोने हैं। आसान नहीं होते, तज़किया का अमल ऐसे ही समझ लें, अपने साथ जब तज़किया करना है तो ऐसे समझें कि जैसे आप अपने गार्डन में जाते हैं, अपने बाग में जाते हैं, आपने कहीं कोई अच्छे पौधे लगाए हुए हैं तो थोड़े दिन बाद आप देखते हैं उनके साथ साथ वीड्स, जड़ी बूटियां उगाती हैं, खुद रॉ पौधे उगाते हैं। आप बार बार जाके उनको उखेड़ के निकाल देते हैं, क्यों? ताकि जो अच्छे पौधे हैं वो नशोनुमा पा सकें, ताकि जो अच्छे पौधे हैं वो आगे बढ़ सके, क्योंकि वरना सारी ताकत ये ले जाएंगी जड़ी बूटियां। तो आप उनको निकालते रहते हैं इनकी हिफाजत के लिए। अब जब एक नफ्स के अंदर आप चाहते आप चाहते हैं कि नेकियां परवान चढ़ें, नेकियों में मैं आगे बढ़ूं, तो उसके लिए जरूरी है कि गुनाहों को निकालना होगा, नाफरमानियों को निकालना होगा। ये गंदगियां हैं, ये वो जड़ी बूटियां, जब तक इनसे अपना नफ्स पाक नहीं होगा, नेकी की तरफ भी रगबत नहीं होगी, नेकी में आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे जब तक आप गुनाहों को छोड़ते नहीं जाएंगे। तो पाक करना अपने आप को जरूरी है। हम दीन का कॉन्सेप्ट सिर्फ बहुत छोटा सा लेते हैं, बस ये कि हाँ ये काम करते जाओ, नमाजें पढ़ ली, ये कर लिया। हम अपने नफ्स के तजकीर की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि कहा गया फलाह, कामयाबी उसने पाई। और फलाह कहते हैं किसान को, किसान देखिए कितनी मेहनत करता है, वो भी जड़ी बूटियां मुसलसल निकालता रहता है, मुसलसल नए पौधों को परवान चढ़ाने के लिए उन मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है, सारा साल कोशिश करता है, तब जाके वो उसकी फसल काम की होती है और वो उससे नफा कमाता है। इसी तरह इंसान, अफलाहा का वर्ड यहाँ पे आया, कामयाबी ऐसे नहीं मिल जानी, कामयाबी कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है उसके लिए मुसलसल मेहनत करते रहें जब तक आखिरी दिन नहीं आ जाता कि दुनिया से रुखसत हो जाएं, तब आप अपनी उस मेहनत का फल पा सकेंगे। तो मुसलसल अपने जिंदगी में चेक करते रहें, ये गुनाह मैंने अभी तक ये गुनाह नहीं छोड़ा, ये गुनाह मुसलसल मेरी आदत बन चुका है, ये चीजें मैं क्यों नहीं ओवरकम कर पा रही इसको, ये मुझे पता चल गया ये अल्लाह की नाफरमानी, मैं क्यों जस्टिफिकेशंस देती जा रही हूं, मैं 30वें पारे पे पहुंच गई हूं, अभी तक मैंने इतना पढ़ लिया, अभी तक क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो गुनाह निकालने होंगे, वरना आपने देखा है जब जड़ी बूटियां बहुत फैल जाती हैं तो वो उन पौधों को भी अपनी लपेट में ले जाती हैं जो आपके अच्छे पौधे होते, फिर नेकियां भी पनप नहीं सकती, आप आगे बढ़ नहीं सकते, नेकियों के बीज डाल भी देंगे ना उनमें ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो जरूरी है कि ये गुनाहों की जड़ों बूटियां जान निकाल के फेंकते रहे, इनको निकालते ना, और देखें कहीं मैं रिवर्स तो नहीं जा रही, कई लोग आगे जाते हैं एक कदम और दो कदम पीछे, फिर एक कदम आगे बढ़ते फिर चार कदम पीछे, कहीं मैं पीछे को तो नहीं चल पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक कदम नेकी की तरफ उठाती हूं और चार कदम पीछे कोई गुनाह भी कर लेती। तो अफलाह मन तज़क्का, वो यकीनन कद यकीनन फलाह उसने पाई है जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। तो इसके लिए फिर क्या जरूरी है, मुसलसल अपना मुहासबा करना, मुसलसल अपना हिसाब किताब करना, मुसलसल देखते रहना कि मैं किस तरफ जा रही हूं। और इसके लिए सबसे पहले जो तज़किया होना है ना, पाक करना है, वो अपनी सोच को पाक करना है। अमल पाक नहीं हो सकता, हमारी नेकियां हम नहीं कर सकते और बुराइयों से नहीं बच सकते जब तक हमारी सोच ही ना पाक हो, हमारी ख्यालात, हमारे अफकार, हमारी थिंकिंग जब तक उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ना आए, वो बेहतर ना हो, वो भलाई की तरफ ना आए, अगर हमारी सोच वहीं की वहीं है ना कि हम बुराई को भलाई समझ रहे हैं और भलाई को बुराई समझ रहे हैं, नेकियां हमें नेकियां को लगती ही नहीं, बुराई हमें बुराई ही नहीं लगती, तो फिर अभी तो सोच की ही पाकी की जरूरत है, सोच ही पाक नहीं हुई, सबसे पहले आपकी सोच पे काम करने की आपको जरूरत है। फिर सोच पे काम करें, और सोच कैसे सही होगी, इस कुरान के जरिए आप अपना तस्किया करें, अपनी सोच को सही करें, बुराई बुराई लगनी चाहिए और उससे नफरत होनी चाहिए, और नेकी नेकी लगनी चाहिए और उससे मोहब्बत और उसका शौक दिल में होना चाहिए। अगर अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचे तो आगे करने का लेवल तो अगला स्टेप है ना, पहले इस लेवल पे पहुंचे कि आपको नेकी नजर आए और बुराई बुराई लगे, हरिनल हक्का हक्का वर्जुक ने तबाव, तो ये हो ना अल्लाह मारिन, आप जब ये आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हक को हक करके दिखा और उसकी इतबा करने की तौफीक दे, बातिल को बातिल दिखा दे मुझे, ये तो नहीं कि बातिल हक नजर आ रहा हो, बुराई भलाई नजर आ रही हो, बुराइयों की कोई शर्म ना रह गई हो, बेहयाइयों को आराम से अंजाम दे रहे हो, बेहयाई बेहयाई ना रहे, तो वो तो नॉर्म है, वो तो कोई बात नहीं, आज का कल्चर है, वो तो कोई बात नहीं, आज सब करते हैं, अगर इस किस्म की सोच है तो अभी तज़किया का अमल शुरू ही नहीं किया, तो पहले सोच का तज़किया करें, अपने अकायद का तज़किया, अकीदे में कुछ बुराई है तो उसका तज़किया करें, अकीदा हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए जैसा रिक्वायर्ड है वो तज़किया करें, फिर अपने देखें कि अपनी इंक्लिनेशन अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त करें, जब थिंकिंग दुरुस्त होगी ना तो प्रायोरिटीज भी दुरुस्त होगी, प्रायोरिटी मेरी क्या है, मेरी प्रायोरिटी कौन सी चीज है, कौन सी चीज मुझे आखिरत में काम आने वाली है, प्रायोरिटाइज करें चीजों को, ये तस्किए के अमल में जरूरी है, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में आता है कि आप अमल करने लग पड़े और वो जो नेकी के अमल है वो उनकी तरफ आप भागें और बुराइयों को छोड़ें, अगर ये स्टेप बाय स्टेप है तो फलाह आपको कहीं पता चल जाए कि आप रोड टू सक्सेस का एक लेक्चर है, एक लेक्चर है कि भाई सक्सेसफुल पीपल कैसे होते हैं और उन्होंने कैसे सक्सेस पाई, अब भाग के जाते हम भी देखें कैसे कामयाबी मिलनी, यहाँ पे अल्लाह ताला ने नुस्खा बता दिया, कामयाबी का नुस्खा क्या है, तज़क्का तज़किया करो, अपने अंदर साफ करो पहले और अपने अमल को साफ बनाओ, वज़ाका रस्मा रब्बी फसल्ला, और फिर आगे दो बातें और दे दी जो आपको हेल्प करेगी, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करो, और फिर उसने नमाज पढ़ी कि इसने और जिक्र किया नाम का, वज़ाका रस्मा रब्बी ही, और उसने जिक्र किया अपने यानी फलाह कौन पा गया जिसे तस्किया किया, और उसने क्या किया अल्लाह की याद की, अल्लाह के नाम को याद किया, फिर उसने नमाज पढ़ी, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें, कद अफलहल मुमिनून हम 18वें पारे में पढ़ रहे हैं ना, मोमिन फलाह पा गए, उनकी क्या खूबियां थी, उनके अंदर नमाज सबसे पहली बात कही गई थी। तो जो अल्लाह ताला के नाम को याद करता रहता है वो फलाह पा जाएगा, फिर जिसने नमाज पढ़ी वो फलाह पा जाएगा। अगर कैसी नमाज, ये हम उसमें देख चुके हैं 18वें पारे में। तो ये स्टेप्स हैं। अब देखिए, अल्लाह के नाम का जिक्र भी इंसान के लिए महफूज किला है, ऐसा किला है जिसके अंदर अगर आप चले जाएंगे ना, तो आप परेशानियों से, दुखों से, मुश्किलात से, बीमारियों से बच सकेंगे, गुनाहों से बच सकेंगे। और खास खास जो अस्कार बहुत ज्यादा, जिनकी ताकीद हमें हदीस में मिलती है, वो मैं चीदा दीदा मुख्तसरन आपके सामने रख देती हूँ, और हम पहले देख भी चुके हैं, लेकिन जिस याद दिहानी के लिए इस्तिग़फ़ार, दुरू शरीफ, इसी तरह या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह ताला की ये अस्माए हुस्ना है जिनकी बहुत ज्यादा फजीलत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाई है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला में 99 बीमारियों का इलाज है, रिस्क भी इंसान को इससे मिलता है। फिर इस तरह सुबहान अल्लाह ही वा बिहम्दी ही, फरिश्तों की तस्बीह है, और ये इससे भी रिस्क मिलता है, और इससे ज्यादा बड़ा अमल कोई कयामत के दिन लेकर नहीं आया होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। ये भी वो अमल है कि कोई आपके ऊपर जादू करे, पुराने से पुराना जादू हो, या कोई भी शैतानी चीजें हैं, या शैतान के वसवसे हैं, या इन चीजों से, बहुत सारी चीजों से आप महफूज रहते हैं, और अजर भी बे इंतहा है, और इससे ज्यादा बड़ा अजर किसी का भी नहीं हुआ कयामत के दिन, जो आप 100 दफा ये पढ़ ले, और जो इससे ज्यादा पढ़ ले तो उससे भी ज्यादा उसका अमल है। तो इसके लिए हम ये सारा दिन के अंदर अपना बना लें कि हम मसलन, हमने अगर सोच लिया हमने 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है या 100 दफा इस्तिगफार पढ़नी है, तो हमें एक दफा देख लें कि 100 दफा इस्तिगफार मसलन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये 100 दफा कितने मिनट में होता है, क्योंकि हम हर वक्त तस्बीह लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त हमने काम करना होता है, हम किस तरह गिनती करें। चलो ये क्राफ आइडिया करने के लिए हम कहें मसलन है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ तो 5-7 मिनट में मेरे लिए पूरा हो जाता है, तो 7 मिनट इस्तिगफार को दे दें, 10 मिनट दुरूद शरीफ को मैंने दे दिए, 20 मिनट मैंने दूसरे एक और कलमे को दे दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी ना बहुत ही अजीम कलमा है, क्योंकि ये भी गमों से निजात, मुश्किलात से निकालता है इंसान को। फिर तीसरा कलमा जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसके अंदर भी इतने फजाइल हैं, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब ये कलमात है। तो इन कलमात को खास तौर पर अपने दिन में शामिल कर लें, कि चलो और कुछ नहीं तो 5-5 10-10 मिनट ही इनको दे दें, कि आप खुले ही पढ़ लें, चलो नहीं भी आप गिन सकते तो अल्लाह के नाम की तस्बीह जरूर करें। और बल तो उसीरून अल हयात दुनिया, अब देखिए पिछली आयात में थर्ड पर्सन की बात हो रही थी, फलाह पा गया वो जिसने तस्किया किया, और जिसने अल्लाह ताला के नाम का जिक्र किया, और फिर जिसने नमाज पढ़ी। अब यहाँ पे तो उसीरून, तुम की बात आ गई, यानी सेकंड पर्सन में बात हो रही है, इसलिए कि जब इंसान थर्ड पर्सन की बात सोचता है तो वो सोचता है वो किसी की बात हो रही होगी ना, लेकिन जब कहा जाता है तुम ऐसा करते हो, तो फिर इंसान अलर्ट हो जाता है और सोचता है अच्छा मुझसे कोई बात कही जा रही, क्या तुम तरजीह देते हो। अल्लाह ताला कहते हैं दो चीजों में कंपेरिजन करना और एक को दूसरी के ऊपर तरजीह दे देना, प्रायोरिटी दे देना कि ये इससे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, दुनिया की जिंदगी का और आखरत की जिंदगी का, और इंसान क्या किसको प्रायोरिटी दे देता है, अल हयात दुनिया, बल तो सिरू ना तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी। अब समझ आई ज्यादा कि दो चीजें थी, उनके अंदर से तुम क्या करते हो, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे देते हो। हालांकि वह हालांकि वल आखिरत खैरु व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। आखरत बेहतर कैसे है कि दुनिया की जिंदगी आखरत के मुकाबले में तो कुछ नहीं। आप जब जन्नत के अहवाल पढ़ते हैं और उसमें आखरत का जिक्र पढ़ते हैं, तो आप देखें कोई भी चीज दुनिया से सिर्फ नाम की मुशाबहत हो सकती है, अदरवाइज कोई मुशाबहत नहीं, ना जन्नत के फलों की, ना जन्नत के घरों की, ना जन्नत के चश्मों की, ना वहां की नहरों की, किसी चीज की भी कोई मुमासलत नहीं है। वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर, इतनी ज्यादा बेहतर है कि ना किसी आंख ने वैसी चीज देखी, ना कान ने सुनी, ना दिल पे ख्याल गुजरा, इससे ज्यादा बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकती है। दुनिया अल्लाह ताला की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है, और आखरत को अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी रहमत है। जो मच्छर भी आपको मतलब हाथ नहीं आता, उसको इतना छोटा सा होता है, एकदम नजर के आगे से गुजर जाता है, और उसका पर इतना छोटा है कि शायद ही हमने कभी देखा हो उसका पर भी। इस मच्छर कितना हकीर, उससे ऊपर उसका पर, उससे भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं, और अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर की भी नहीं जितनी वैल्यू इस दुनिया की, यानी उससे भी ज्यादा हकीर है। तो सोचे जरा, जिसने बनाया ना वो खुद बता रहा है। देखिए, बनाने वाले को ज्यादा पता होता है ना कि किसी चीज के अंदर क्या, यानी किस वैल्यू की ये चीज है। अब उसी ने बता दिया कि तुम इसके ऊपर रीझते हो, इसका शौक रखते हो, इससे मोहब्बत करते हो, इसके लिए कोशिशें करते हो, इसके लिए अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा लगा देते हो, हालांकि आखरत जो है वो बेहतर है, वो अबका और बाकी रहने वाली है। हमें ये बात को भी समझना चाहिए कि ना सिर्फ बेहतर है बल्कि बाकी भी रहने वाली, यानी कभी खत्म नहीं होनी, कभी खत्म होनी ही नहीं है। कोई आप फिगर ले आए, ट्रिलियन 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 ईयर्स का भी फिगर ले आए, तब भी आखरत ने खत्म नहीं होना। हम इस 100 साल, मैक्स 100 साल की जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सोचेंगे कितनी मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं इसके पीछे, हालांकि ये मैक्सिमम 100 साल है, और वो उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई फिगर दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम उसके लिए वक्त लगाना नहीं चाहते, हम उसके लिए शौक नहीं रखते, हम नहीं समझते कि हम उसके लिए भाग दौड़ करें। हम दुनिया की जिंदगी पे खुश हुए में या राजी हुए, मुतमईन हुए, यही हमारी बीमारी है, यही हमारी बीमारी है। इसकी वजह से हम अपना तस्किया भी नहीं करते, क्योंकि बस हम इसमें मगन हैं इतने, और हमें आखरत के शौक नहीं लगे हुए। अल्लाह ताला ने इस बीमारी को यहाँ पे बयान फरमाया, तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को। इंसानों की कोशिश क्या है कि दुनिया की ये जिंदगी मेरी अच्छी से अच्छी हो जाए। हम सब सोचते हैं नहीं, हम दुनिया से तो नहीं ज्यादा मोहब्बत करते, हम तो आखरत से मोहब्बत करते हैं। अगर वाकई हम आखरत से दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें तो अपनी उम्र का बेस्ट हिस्सा यानी जवानी अपनी आखरत के लिए लगा देनी चाहिए। अपने वक्त का कीमती तरीन हिस्सा हमें आखरत के घर बनाने के लिए सर्व करना चाहिए। अपनी जहानत को हमें आखरत के लिए सबसे पहले आगे लगाना चाहिए। हमें यहीं से पता चल सकता है कि हमने किस चीज को प्रायोरिटी दी हुई है। हम अगर आखरत को दुनिया पे तरजीह देने वाले हैं, तो हमारे शौक बदल जाएंगे, हमारी फिक्रें बदल जाएंगी, हमारी भाग दौड़ बदल जाएगी। मगर देखें तो सही, मेरा सारा दिन गुजरता किधर है, मैं किन सोचों में और किन ख्यालात में रहती हूं, मेरे दिमाग पे कौन सी चीज सवार रहती है, ये सोचिए जरा। सवार रहना एक अलग बात होती है, ये बात एक अलग है कि कभी कभी सोच आ जाना। देखिए, हम क्लास में बैठे हुए तो सोच आ ही जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे क्या हाल रहता है, कितनी सोच आती है, कितनी दफा आप को ये ख्याल आता है कि नहीं मुझे आखिरत के लिए क्या करना है, आज के दिन में मैंने क्या किया, किसी ने क्या खूब बात कही, कि रो अपने उस दिन पे जिस दिन में तुमने अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कमाई की, रो अपने उस दिन के लिए। तो इसका मतलब वो दिन जाया हो गया, इसका मतलब उस दिन का कोई फायदा नहीं हुआ। और जिन लोगों के दिल में आखरत की फिक्र लग जाती है ना, उनको अपनी नेकियां बड़ी नहीं लगती, वो तो हर वक्त खौफे खुदा से लर्जा रहते हैं, उनको तो लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को दुनिया से मोहब्बत है और आखरत से नहीं है ना, दुनिया को तरजीह दी है, बहुत छोटी छोटी चीजें ही करके सोचते हैं हमने तो बहुत कर लिया, हमने तो काफी कर लिया, हमें तो कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं। तो देखिए, इस दुनिया में आप जब से आए कितने साल रह लेंगे, 100 साल जैसे मैंने कहा मैक्सिमम, उसके आगे बरजख है जो ना जाने कितनी लंबी है, क्योंकि जब तक कयामत नहीं आती बरजख है, और उसके बाद जब हशर में उठेंगे तो उसके बाद की जिंदगी कभी ना खत्म हो जाने वाली। अब आप बताइए इन तीनों में से कौन सा फेज है जो शॉर्टेस्ट है? सबसे ज्यादा शॉर्ट ये दुनिया का फेज है, लेकिन देखिए कब्र में भी तो कभी ना कभी कयामत आ ही जाएगी ना, कभी कयामत आ जाएगी, उठना होगा, तो कब्र वाला फेज भी इतना लंबा नहीं है। सबसे लंबा आखरत की जिंदगी का है, जो अब का है, बाकी रहने वाली है। एक इंसान अकलमंद हो तो वो बाकी रहने वाली का सौदा करेगा, टेम्प्रेरी का नहीं। देखिए आपको अगर आज कोई बंदा सेल कर रहा है जमीन और कह रहा है ये आप ले ले, ये बड़ी अच्छी जमीन है, लेकिन इसके ऊपर ना किसी वक्त भी फ्लड आ सकता है, फ्लडिंग आ सकती, तो अपने अपनी लपेट में ले लेगी, तो सब तो कुछ खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, फ्लड आ जाएगा। और दूसरी जमीन है जो दूर है जरा, ये करीब है, दूसरी दूर है जरा, बहुत ही बेहतरीन है, मगर मैं उसका एड्रेस नहीं आपको दे सकता, आप जाके देख नहीं सकते उसको, आपको बस मेरी बात पे यकीन करना हो। आप फ्लड वाली जमीन पे घर लेना चाहेंगे, जिसमें जो इतनी टेम्प्रेरी है, किसी वक्त भी पानी के नीचे आ जाए, कोई भी नहीं लेना चाहेगा, कहेगा इसका कोई फायदा नहीं। ये दुनिया भी ऐसी ही है कि ये टेम्प्रेरी है, इसको किसी वक्त भी मौत आके इसका काम तमाम कर सकती, किसी वक्त भी, ऐसे उसको कहे किसी वक्त भी फ्लड आ गया, रात को आ सकता है, दिन को आ सकता है, उसकी गारंटी नहीं है कब आ जाए, तो आप खरीद ले, खरीदेंगे क्या? लेकिन हम सब रीझ रहे हैं इस दुनिया की जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को दुनिया ही की फिक्र लगी रहे, अल्लाह ताला उसके कामों को बखेर देता है, उसकी मोहताजी को उसकी आंखों के सामने ले आता है, यानी उसके काम बिखर जाते हैं, वो सारा दिन ही नहीं, कामों को ही नहीं समेट पाता, फिर कहते हैं ना टाइम ही नहीं, क्योंकि उसको दिमाग पे सिर्फ दुनिया सवार है, और मोहताजी उसकी आंखों के सामने ले आता है, यानी अब उसको मोहताजी ऐसी है कि हर वक्त उसको दिमाग के अंदर यही रहता है कि ओ मेरे मेरे से ये खत्म ना हो जाए, मेरी जॉब खत्म हो गई तो क्या होगा, मुझे कोई ऐसी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, वो कहीं जाके बिल भी पे नहीं करता, कोई साथ होता तुम ही दे दो, हाँ मेरे पास तो है ही नहीं है, हालांकि बैंक भरे में, लेकिन वो हर वक्त उसको बस ये होता है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरा काम है, तो मोहताजी उसके सामने रहती है, और फिर भी दुनिया उसको उतनी ही मिलती है जितनी उसकी तकदीर में लिखी गई। और जिसकी नीयत आखरत की होती है ना, अल्लाह ताला उसके मामलात को यकजा कर देता है और इसको दिल को गनी कर देता है, और दुनिया ना कर रगड़ती उसके पास आती है। तो फिक्र करने की चीज असल आखरत है, जिसने कभी खत्म नहीं होना, जो इस फिक्र में मसरूफ रहेगा ना, अल्लाह ताला उसके दुनिया के कामों को खुद ब खुद सुधार देगा। आप इसको कभी आजमा के देखिए कि अल्लाह ताला जरूर आपके कामों को ऐसा यकजा कर देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा, कभी करके तो देखें, कभी तजर्बा करें इसका। लेकिन इंसान इतना थुड़दिला है ना, वो इन बातों में यकीन नहीं करता, और बस उसकी फिक्रों पे हर वक्त फिक्र यहीं की सवार रहती, इन्हीं चीजों ने उसको परेशान किया और आखरत को भुलाया हुआ, क्योंकि एक ही फिक्र दिल में रह सकती है ना, दोनों तो नहीं रह सकती। तो हदीस में है ना, जिसे जिस दुनिया की फिक्रों ने जिसको परेशान कर रखा है, तो अल्लाह ताला को परवाह नहीं है फिर वो किस वादी में जाके हलाक होता है, जाओ फिर जहां मर्जी। तो जो तमाम फिक्रों को छोड़ के एक फिक्र लगा लेता है आखरत की फिक्र, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की फिक्रों के मामले में उसके लिए काफी हो जाता है, यह हदीस में आता है, अल्लाह काफी हो जाता है, और वाकई ऐसा है। तो अब ये बाकी रहने वाली है, और ये बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया उसका घर है जिसका आखरत में कोई घर ना हो, दुनिया उसका माल है जिसका आखरत में कोई माल ना हो। इसे जमा करने के पीछे वो लगते हैं जो बेवकूफ है, क्योंकि देखिए आज मेरी और आपकी आंख बंद हो जाती है तो क्या हमारे बैंक बैलेंस का होगा, क्या वो जो हमने प्लॉट खरीद के रखे हुए हैं, जो हमने कपड़े बनाए हुए हैं, जो हमारे जेवर हैं, जो हमारी और बिलोंगिंग्स हैं, जो प्रेशियस चीजें हैं जिनको आज हमने सीने से लगाया हुआ है, हम उनको खर्च नहीं करना चाहते, या जिन जॉबों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन घरों के पीछे हम, जिनको संवारने में हर वक्त अपना टाइम लगाए रखते हैं, वो सब किधर जाएंगे? खुद सोचिए, एक लम्हे की बात है, इधर आंख बंद हुई सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कुछ भी मेरे लिए काफी नहीं होगा, कुछ भी मेरे काम आने वाला नहीं होगा।
और मैं आपको कई दफा ये हदीस बता चुकी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखरत का नुकसान किया ही किया, और जिसने आखरत से मोहब्बत की उसने दुनिया को नुकसान पहुंचाए पहुंचाया। तो है लोगो, तुम बाकी रहने वाली को फना होने वाली पर तरजीह दो, बाकी तो वो रहने वाली है, तुम इससे मोहब्बत करो, इससे मोहब्बत करोगे ना आपकी आखरत का नुकसान होगा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारे नबी ने फरमा दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दुनिया से मोहब्बत करने वाले लेकिन आप आखरत भी फुल ले ले, फुल दुनिया फुल आखरत, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कहीं यहाँ पे गिव अप करना होगा, कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कहीं यहाँ पे कोई कुर्बानी देनी होगी तो आखरत बन सकेगी। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे भी फुल हो वहां पे भी फुल हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप उसको इस एनर्जी को एक तरफ ही लगा सकते हैं, या तो आप दुनिया सिर्फ जरूरत की ले लें और बाकी सारा अपना वक्त और अपनी एनर्जी आखरत के लिए लगा लें, या आप दुनिया को भर भर के ले लें और आखरत के लिए ना कोई एनर्जी रह जाएगी, बस फिर टकरे मारने वाली नमाजें ही होंगी और बस ऐसा भाग दौड़ के कोई काम होंगे जो जल्दी जल्दी बस ये करके फिर मैं जाऊं अपनी दुनिया संवारने के लिए भागूं, बस ये होगा। अल्लाह अकबर। तो इन हादा लफ सुहुफ उला, ये बातें सुहुफ उला में भी थी, ये सिर्फ कुरान में नहीं है, ये सारी बातें भी मुराद हो सकती है, पूरी सूरत की बातें भी, और ये भी कि दुनिया की जिंदगी बहुत टेम्प्रेरी है जिसको तुम तरजीह देते हो, आखरत बेहतर है, और कद अफलाह मन तजक्का भी हो सकता है, ये भी सब चीजें सूफ उला में थी, सूफ इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफों में और मूसा अलैहि सलाम की, इन्हीं दो पैगम्बरों की बात क्यों आई, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का इब्राहिम अलैहि सलाम के खुद को पैरोकार करते थे और यहूदी मूसा अलैहि सलाम के, और यही दोनों थे जो कि वहां पे आबाद थे, लिहाजा उनके सुहूफ की बात करके कहा गया, ये सिर्फ कोई नई बातें नहीं है, ये पहले भी यही बातें बयान की जा चुकी हैं और ये पहले सहीफों में भी थी, तो इसलिए तुम इस चीज को समझो। तो एक हमने बहुत चीज को जो आज हमें समझ आई, फदक्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, ये हमें समझ आया, और हमें ये अच्छा किस तरह से नसीहत फायदा देती है, लेकिन जब आप नसीहत करते रहते हैं ना, आप किसी को नसीहत करते रहेंगे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देती हूँ, मसलन है कि आपको किसी ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ जो बिदत की महफिल है, या जो ऐसी महफिल है जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी होती है, तो अब एक आपके पास चॉइस है, आप चुप रहते हैं, एक आपके पास चॉइस है, आप कहें कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं आ सकती, ठीक है, अब आपने कहा नहीं ये गलत है मैं नहीं आ सकती, फिर किसी और ने भी जुर्रत की, उसने भी कहा नहीं ये गलत है मैं नहीं आ सकती, तीसरे ने भी कहा, चौथे ने भी कहा, जब 10 लोगों ने कहा तो वो जो करने वाला है वो भी सोचेगा कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकता, तो ये फायदा दे सकती है, आप अगर हौसला करके और आप तज़कीर करें, नसीहत करें किसी को, तो वो काम आ सकता है, और आपको ज़रूरत है कि आप ये करते रहें, क्योंकि अगर सब लोग खामोश होके बैठ जाएं और कहें कोई बात नहीं, हम कैसे कहें, और फिर देखो कोई और तो कहते नहीं, क्या फ़ायदा होगा मेरा कहने का, तो फिर कोई भी नहीं कहेगा और फिर बुराइयां इसी तरह फैलती जाती हैं, वो इसलिए तज़कीर करना, याद दहानी कराना फ़ायदा देती है, और ये नहीं होता कि आपने कोई नई बात किसी को बतानी होती, तज़कीर याद दहानी, याद दहानी किस चीज़ की होती है, इसका मतलब है कोई चीज़ पहले से है उसका रिमाइंडर देना, आपको पता है कि मैंने फलां जगह पे पहुंचना है इस मीटिंग में, अब आप अलार्म क्यों लगाते हैं, इसलिए नहीं कि अलार्म आपको बताए, इसलिए कि आपको रिमाइंड करा दे, पता तो आपको पहले ही है लेकिन रिमाइंडर के लिए, क्योंकि इंसान भूल सकता है ना, तो आपने रिमाइंडर लगाया होता है, इसी तरह आपको रिमाइंडर की जरूरत होती है, हर इंसान को होती है कि बुराई से बच जाए भलाई की तरफ आए, तो ये रिमाइंडर्स हमारे लिए जरूरी हैं, और हम रिमाइंड कराते भी रहें दूसरों को भी और अपने लिए भी, हमेशा खुद को रिमाइंडर से जोड़े रखें, कभी रिमाइंडर से भागे नहीं कि जी मुझे तो पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, नहीं हर इंसान के लिए ये जरूरत है, फज़क्किर रिमाइंड कराओ, और इसमें बार बार की बात है, बार बार नसीहत करो, ज़िक्र है। अब आप तिलावत सुनिए, फिर नेक्स्ट हम सूरह शुरू करते हैं।
ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب يحسبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.